Om Shanti. आज सुबह सुबह बाबा हम आत्माओं को विशेष रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। बाबा ने कहा, तुम हो सेल्वेशन आर्मी, सबको मुक्ति देने वाले, सबका उद्धार करने वाले, तो तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या करना पड़ेगा? बाबा ने विशेष सेवा के लिए बोला है, इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां करो और आत्माओं को सर्वेज करो। इसमें बाबा ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का कॉन्ट्रास्ट भी बताया है और पूछा है, भक्ति मार्ग अच्छा है या ज्ञान मार्ग अच्छा? क्या अच्छा? लोग कहेंगे भक्ति अच्छी, क्योंकि उसको साइलेंस का पता नहीं, योग का पता नहीं, वो अनुभूति का पता नहीं, तो लोगों को बाहर का ही सब अच्छा लगता है। और हम कहेंगे हमने भक्ति किया तब ज्ञान मिला। अब ज्ञान मिला इसलिए हम औरों को सर्वेस करते हैं, मुक्त करते हैं, धक्के से छुड़ाते हैं, भटकने से छुड़ाते हैं। तो बाबा ने बीच में बहुत अच्छी मनोरंजक बातें भी बताई है। आज है 20 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सर्वेशन आर्मी हो, तुम्हें सबको सदगति देनी है। सदगति कैसे मिलेगी सबको? सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। प्रश्न है, मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहां लगाना है? मनुष्य अकल कहां लगाते हैं और हमें अपना अकल कहां लगाना है? उत्तर है, मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं। समुद्र के नीचे कितना गहरा है और क्या क्या है, आसमान में और ऊपर जाएं, सितारों में क्या है, ग्रहों में क्या है, सूर्य और चांद तक पहुंचने का सोचते हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं। इसका अंत तो मिल नहीं सकता। बाबा ने फाइनल रिजल्ट सुना दी है। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। जो इतने साइंस की खोज कर रहे हैं उसको दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो, तो कितनी नशे की बात है। वो इतनी मेहनत करते, इतना दिमाग लगाते, उसको दुनिया याद करेगी लेकिन पूजेगी नहीं, तुम्हें दुनिया पूजेगी। तो नशे का गीत कौन सा होगा? इतना नशा चढ़ा दिया बाबा ने, तो नशे का गीत होगा ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया, तो कितना बड़ा नशा है। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं ये है ज्ञान मार्ग और वो है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा, दो चीज हुई ना। कहा जाता है ज्ञान से सदगति होती है, जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है। एक कैसे होगा, वो सब बाह्य है और ज्ञान मार्ग का हमारा सारा इंटरनल है। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा तब सदगति होगी, भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। जब भक्ति पूरी हो जाएगी उसका कोटा पूरा हो जाएगा, लास्ट में ज्ञान मिलेगा, बीच में नहीं मिल सकता है। किसी को ज्ञान नहीं लगता है, कितना भी सुनाओ तो समझ जाना चाहिए इसकी भक्ति अभी पूरी नहीं हुई है। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी, इसलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं। क्या गाते हैं, मनुष्य जब परेशान हो जाते हैं रिश्तों से और संबंधों से कार्य से, तो क्या बोलते हैं, और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। अब वो कौन है किसके साथ जोड़े ये तो समझते ही नहीं। अक्सर करके जब भगवान नाम लेते हैं तो किसके तरफ बुद्धि जाती है, अक्सर करके बुद्धि श्री कृष्ण तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े, तो जब श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई आदि किसी की तो दरकार ही नहीं। जब श्री कृष्ण के तरफ नजर जाती है तो फिर गुरु के पास क्यों जाते हो, फिर यहां वहां क्यों भटकते हो। श्री कृष्ण को ही याद करना है, श्री कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। फिर एक में ही बुद्धि लगा के रखो, एक के ही पीछे जाओ, एक से ही नाता जोड़ो। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, श्री कृष्ण में बुद्धि लगाने की बात आई तो कौन याद आया, जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी। कामकाज करते श्री कृष्ण को ही याद करती रही, घर में रहना करना खाना पीना तो होता है ना, सच्ची प्रीत एक श्री कृष्ण से जोड़ी। उसको मस्त दिखाते हैं, उसको जहां देखे वहां श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ता था, जैसे कि वो आशिक और वो माशूक हो गए। श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है, कौन सा फल मिलता है, अल्पकाल का फल तो मिलता ही है, खुशी भी मिलती है, उन्हों को तसल्ली भी होती है, संतुष्टता भी मिलती है, टेम्परेरी सब कुछ मिलता है। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं, सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। जोड़ी तो बराबर है लेकिन बाद में तोड़ी, ये बात धीरे धीरे होता है। अब ऊंचते ऊंच सच्चा तो परम पिता ही है, सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है, उसको कोई भी जानते नहीं। बल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं ये नहीं जानते। पहले तो शिव परमात्मा ही है ये पक्का हो जाए, फिर वो आते हैं और सबको प्योर बनाते हैं, ज्ञान देते हैं, ये दूसरी बात समझ में आए, फिर आगे चले कि वो कब आते हैं। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे, कब कैसे आते, क्या आकर करते, किसको भी पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सद्गति करते हैं। अगर ये पता पड़ जाए तो फिर सब यहां ही चले आए ना, भी परमात्मा शिव ही सबकी सद्गति करते हैं और अभी कर रहे हैं। अगर इतना भी ज्ञान मालूम हो जाए तो सेवा ही पूरी हो जाए। परंतु कैसे करते हैं, सद्गति का अर्थ क्या है। देखो बाबा एक एक पॉइंट कितने खोल रहे हैं कि मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है, बाबा ने आकर के सारा एक एक चैप्टर कैसे खोला है। कुछ भी से नहीं समझते। शिव बाबा ने तो जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे, किस धर्म के, देवता धर्म के थे, तुमको ये पता नहीं था, भूल गए थे, तो फिर और कैसे जान सकेंगे। जब तुम ही देवता थे, तुमने ही ये सब सद्गति पाई थी, तुमने ही ये सब प्राप्तियां अनुभव की थी, तुम ही भूल गए तो बाबा कहते वो कैसे जानेंगे। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन कहो व सद्गति की आर्मी कहो, हम सबको छुड़ाते हैं ना, मुक्ति देते हैं, सभी को विकारों से दुखों से मुक्त करते हैं। अभी तुम बच्चों पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी, अभी इतनी जिम्मेवारी समझेंगे तो फिर सेवा में लग जाएंगे। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो, भाषाएं बहुत है, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, झंझट तो है ही है। एक विदेश की भाषाएं छोड़ दो, अगर भारत की भाषाएं भी समझ लो तो कितनी है। और हर कोई तो हिंदी और इंग्लिश आजकल तो पढ़ते हैं तो अधिकतर समझते हैं, लेकिन बिल्कुल गांव में चले जाओ तो गांव के लोग जो होते हैं ना हिंदी जानते ना इंग्लिश जानते, अपनी लीगल लैंग्वेज ही जानते, अपने स्टेट की भाषा ही जानते, मुख्य भाषाओं में ही होता है। बाबा कहते हैं भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। माना किताबें केवल बनाने से नहीं, उस समय तो सब भाषा में नहीं थी बुक्स, अभी तो हर भाषा में है, तो चित्र बनाने पड़ते हैं ताकि उस भाषा का व्यक्ति चित्रों पर समझा सकता है। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। अभी विदेश टोटल इंटरनेशनल चित्र कौन सा है और केवल भारत के लिए चित्र कौन सा है? बाबा ने दो चित्र बताए हैं, एक है सारे विश्व के लिए और एक है केवल भारत के लिए। गोले में भी सारा ज्ञान है, वो है सबके लिए, क्योंकि और धर्म भी दिखाए हैं ना, और विश्व का ग्लोब दिखाया है। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसलिए उसके नीचे लिखा भी है भारत के उत्थान और पतन की कहानी। इसमें और कोई धर्म है नहीं, सीढ़ी के चित्र में और धर्म नहीं है। ऐसे थोड़े भारत तमो प्रधान बनता है तो क्या होता है? जब भारत तमो प्रधान होता है तो और तमो प्रधान नहीं बनते, ऐसी बात नहीं है। जब भारत तमो प्रधान बनता है तो सब तमो प्रधान बन जाते हैं। तमो प्रधान तो सब बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए। बाबा कहते ये ज्ञान उन्हों के लिए, माना दूसरे देश के लिए, दूसरे धर्मों के लिए भी होना चाहिए। ये सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। ये बाबा जैसे मनन चिंतन करके एक एक चीज खोल के बताते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं बच्चों को भी मनन चिंतन करना चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है। वर्षा रचयिता से मिलता है, ये भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे व भगवान भगवती थे। लेकिन लोग जब हिस्ट्री बताते हैं तो द्वापर युग से बताते हैं। अगर टोटल कल्प की बताएं, 5000 वर्ष की बताएं, तो भारत के पहले रूलर लक्ष्मी नारायण थे। अच्छा, उनको ये स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? जरूर भगवान द्वारा मिला। कैसे, कब मिला, ये किसको भी पता नहीं है। तो इतना नशा चढ़ता है ना, किसी को भी पता नहीं है, हमको पता है। हमें बाबा ने ज्ञान दिया है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल फिर प्रलय दिखा दिए। गीता ज्ञान सुनाया, फिर क्या हुआ? पांडव भी पहाड़ों पर गल मरे, प्रलय हो गए, बात खत्म। रिजल्ट कुछ भी नहीं। इतना बड़ा गीता ज्ञान सुनाया, इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतनी बड़ी बात इसको लिखी गई, उसके बाद रिजल्ट कुछ भी नहीं। ये तुम बच्चों को समझाना है, उसको खोल के समझाना है कैसे भगवान ने गीता ज्ञान दिया, उसके बाद प्रलय हुआ, उसके बाद नई दुनिया आई। वो को प्रलय तक पता है, नई दुनिया का पता नहीं है। चित्र तो सब तरफ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भले ड्रेस फीचर्स आदि और होंगे। जिसको जो आया सो बैठ बनाया है वही चित्र, लेकिन अलग अलग ढंग से, अलग अलग रूप से बनाते हैं। जैसे श्रीनाथ श्रीनाथिनी, ये श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ श्रीनाथिनी ये राधे कृष्ण है ना। श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं है। ताज वाले क्यों नहीं है? हम लोग तो श्री कृष्ण को ताज दिखाते हैं, लेकिन बाबा का है कि जब ताज पहना तो लक्ष्मी नारायण बन गए, जब लक्ष्मी नारायण बने तब ताज पहना। तो बाबा कहते हैं श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं है, काले भी नहीं है, वो कृष्ण को काला दिखाते हैं ना। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है न कि राधे कृष्ण की। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे लक्ष्मी नारायण, डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। माना बाबा कहते हैं राजधानी तो और भी 1, 2, 3 चलेगी, लेकिन नाम तो लक्ष्मी नारायण का ही चलेगा ना। जैसे वो कहते हैं ना एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही लक्ष्मी नारायण फर्स्ट सेकंड थर्ड चलेंगे। राम सीता का घराना लक्ष्मी नारायण का घराना राधे कृष्ण का घराना नहीं होता, क्योंकि उसकी राजधानी नहीं है, वो बचपन का रूप है। ये बातें मनुष्यों के ख्याल में ही नहीं है, तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। अब बाबा कहते हैं सर्विस पर आते हैं, जिसको सर्विस का शौक है वो फटकते हैं, माना उछलते हैं। कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्तियां रचनी पड़ती है। कई लोग कहते हैं हमको ज्ञान सारा पता है, हम समझते सारा है, लेकिन दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दूसरों को समझाने में हमको थोड़ा संकोच होता है या जल्दी से वो हिम्मत नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं खुद ही युक्तियां रचो। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं, परंतु भगवान कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब भगवान डायरेक्ट क्या जवाब दे रहे हैं उनका, क्या बोला बाबा? पहले बोला यज्ञ करने से, तप करने से, तीर्थ करने से भगवान मिलेंगे। अब भगवान क्या बोलते हैं, भगवान का आंसर सुनो। परंतु भगवान कहते हैं ये सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। सर्टिफिकेट मिल गया लास्ट में। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे चोटी है, कोई कहां से भी जाए, कहते हैं अभी भी लोग ऐसा कहते हैं कि मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग है, कहीं से भी जाओ एक को ही तो मिलना है, भगवान से ही तो मिलना है। आप इस रास्ते से जा रहे हो, हम उस रास्ते से जा रहे हैं, कोई कहां से भी जाए। तो मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं, भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर। अब भगवान ने देखो हम बच्चों को ये भी लास्ट में बता दिया, भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आप आकर पावन बनने का रास्ता बताओ। आप बिगर पावन हो नहीं सकते, थक गए हैं। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती है। अब तो है अंत, वो गंदगी होती है उसी में ही नहाते भी हैं कि पाप धुलेंगे। दुनिया को बदलना है, वास्तव में दुनिया एक ही है, दो भाग बनाए हैं, तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग अलग नरक अलग। मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नरक अलग अलग दुनिया है, परंतु ये आधा आधा है। दुनिया तो यही है, केवल उसका पीरियड आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती है, इन बातों को कोई समझते नहीं, मुंझे हुए हैं। कोई श्री कृष्ण को भगवान, कोई राम को भगवान कह देते। आजकल तो आजकल क्या करते हैं, मनुष्य अपने को ही भगवान कह देते। हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए। कैसे तीखे हो गए कि देवताओं से भी खुद को भगवान कह देते हैं। देवताओं को फिर भी देवता कहेंगे, लेकिन खुद उससे आगे हैं। क्या कहते खुद को, भगवान। तो बाबा कहते हैं, देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूं संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। वो है निराकारी दुनिया, ये है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने के लिए बड़ा बनाना पड़े, वो झाड़ का चित्र बड़ा बनाना पड़े। वो निराकारी झाड़ जो परम धाम का चित्र है, बाबा कहते वो बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म महतत्व भी इतना बड़ा है जितना, कितना बड़ा है ब्रह्म महतत्व भी कितना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है। दोनों का अंत नहीं पा सकते, बल कोशिश करते हैं। एरोप्लेन आदि में जाएंगे, रॉकेट में जाते हैं ना, मिसाइल आदि भी उसी तरीके से बनाते हैं, और ऊपर जाने के लिए रॉकेट बनाते हैं कि हम जितना ऊपर जाएंगे क्या क्या है खोज के आएंगे। बाबा कहते क्या है, नीचे समुद्र ही समुद्र और ऊपर आकाश ही आकाश, वहां तो कुछ भी है नहीं। भल कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन सब बातों से फायदा क्या। अगर पता पड़ भी जाए तो भी फायदा क्या। समझते हैं, हम अपना अकल निकालते हैं, हम अपने दिमाग को यूज करते हैं। ये है मनुष्यों का अकल, साइंस का घमंड भी मनुष्यों में है। बस कितना भी कोई अंत पाए, परंतु कोई कितना भी अंत पाए, चंद्रमा भी जाके आए, तो भी उसको सारी दुनिया पूजेगी नहीं, पूजेगी नहीं ना। देवताओं की पूजा होती है। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम, भल ये सब जानते हैं हम मूल वतन से आए हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। वो क्या है, कैसे आत्माएं वहां रहती है, फिर कैसे नंबर वहां आती है, ये कोई नहीं जानता। ब्रह्म महातत्व में निराकारी जाड़ है, वो परम धाम दिखाते हैं ना सीढ़ी के चित्र में भी ऊपर, ये नहीं समझते हैं सतयुग में थोड़े रहते हैं। बाबा पूरा सीढ़ी का चित्र क्लियर कर रहे हैं, ऊपर परम धाम है, कैसे आत्माएं धीरे धीरे नीचे आती हैं। सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं कहाँ रहती है? मूल वतन में रहती है। जैसे जैसे यह साकारी वतन है वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता, सारा वतन खाली हो जाए तो क्या हो जाए? सारा वतन परम धाम खाली नहीं होता, बाबा ने कहा है। अगर सारा खाली हो जाए तो अगर सारा खाली हो जाए तो प्रलय हो जाए। प्रलय होती नहीं, अविनाशी खंड है ना। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे, हम किसका कल्याण करें? तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय देवे ना। जो हमें खुशी मिली, हमारी बुद्धि एक में लगी, ऐसे दूसरों को भी लगाए। वो बाप है, उससे वर्षा मिलता है। कैसे मिलता सो हम बता सकते हैं। बताने वालों में भी नंबरवार है। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं तो सीखना पड़े। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है। जबकि रास्ता मिला है तो एक दो का कल्याण करना है। दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाएं, रूहानी खिदमत करें। सब एक दो की सेवा करते हैं। बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं। और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते, रूहानी बाप ही रूहानी सेवा करते, अर्थात रूहों की सेवा करते। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है, जो बाप ने सिखाई है। कल्याण इसमें है और कोई में फायदा नहीं। बाबा कहते इस सेवा में ही फायदा है और कोई सेवा में फायदा नहीं। प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे। कई तो डरते हैं। क्या डरते हैं? अब बाबा ने बड़ी मजेदार बात बताई है। क्या डरते हैं? कई तो डरते हैं कि पता नहीं हमको भी संन्यास न करना पड़े। आजकल तो सन्यासी बहुत है ना। कफनी पहन, दो अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही जाता है। कहां न कहां से कोई दुकान पर जाएगा, दो पूरी दे देंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे, पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। आजकल तो इन भिखारियों का भी बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है, बेहद की बादशाही मिलती है, सदा निरोगी बनते हैं। बादशाही भी मिलती है, सदा निरोगी बनते हैं। शाहूकार मुश्किल उठते हैं। गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवा रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शनी के सेट बहुत बनते हैं ना, अभी तो बहुत रेडीमेड मिल जाते हैं फटाक से, क्योंकि गांवड़े बहुत हैं ना। मिनिस्टर आदि समझेंगे कि ये नॉलेज अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बहुत आएंगे। वो बाबा ने कितने साल पहले ये बात बताई, वो अभी हम सब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। कट निकालने में टाइम लगता है, रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। एक के पीछे नहीं, सबके पीछे। एक के पीछे ही रात दिन लग जाएंगे तो वो भी परेशान होगा। बाबा कहते हैं सब अलग अलग जगह पर रात दिन लग जाएंगे तो कितनों को ज्ञान सुनाएंगे तो कोई निकल पड़ेगा। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर ये शरीर भी छोड़ेगी। ये सब समझने की बातें हैं, प्रदर्शनी में भी समझाना है। मुख्य है भारत की बात। भारत का राइज हो जाता है तो सबका राइज हो जाता है। भारत का उत्थान होगा, सबका उत्थान होगा। भारत नीचे गिरा तो सब नीचे गिरे। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। पहले प्रोजेक्टर शो होते थे, अंधेरा होता था, उसमें स्लाइड से सारे चित्र दिखाते थे। तो बाबा कहते उसमें अंधेरे में किसने समझा नहीं समझा, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, क्या पता। प्रदर्शनी में तो सामने होंगे तो उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो प्रश्न पूछेगा तो वो अच्छा है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। ये भी लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए प्रदर्शनी में, क्या लिखना चाहिए? 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। यह तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा देते हैं, बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, है बहुत क्लियर बात। परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे, बाबा कहते है तो क्लियर बात, लेकिन जब किसकी बुद्धि में बैठे। अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। अभी तो अखबार क्या, टीवी से हर घर में मैसेज जाता है। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी होना है। इस सेवा की बातें याद करते रहेंगे तो खुशी भी होगी। प्रैक्टिस पड़ जाए अगर ये मनन करने की, सेवा करने की प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। सदा खुशी में रहेंगे, कभी भी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं रहेगा, उदासी नहीं आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आज सारा मुरली का सार इस दो बातों में है। पहली पॉइंट, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है, और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है। खुद की भी जोड़नी है तो दूसरों को भी जुड़ानी है। दूसरी पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। वरदान, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। उसका क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छा, बढ़िया। जो महान आत्माएं होती है, देखो महान आत्मा किसको कहेंगे, ये साधारण बात नहीं है। जो महान आत्माएं होती है उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वो सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो, इसमें बाबा ने होमवर्क दिया है, चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सुख दिया सबको, पुण्य का काम किया। पुण्य किसको कहते हैं, अभी देखो पुण्य की डेफिनेशन। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। सारे दिन में हमारे अनपास ऐसा कोई कर्म हो जो सबके आशीर्वाद मिले, एक कर्म भी ऐसा हो वो भी बहुत बड़ी बात है। स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। कोई भी हमने काम किया, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत ये टॉपिक चल रही है ना इस महीने की, संस्कार व नेचर तो हरेक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, हर बात में सफल, हर संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है। कब आ सकती है? जब इजी नेचर हो। इजी नेचर किसको बोलते हैं? अभी इजी नेचर की डेफिनेशन सुनो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमटेंस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, मोल्ड करने वाला, हर बात को मोल्ड कर ले हम अपने आप को। इजी माना अलबेला नहीं। अच्छा, ओम शांति।